अरुणिमा बेहोश हो चुकी थी और इस वक्त बेड पर लेटी हुई थी। आस्तिक उसे बेसमेंट से लेकर आ गया था और उसने अरुणिमा को आराम से बेड पर लिटा दिया। लेकिन आस्तिक के दिमाग में कुछ चल रहा था। उसके दिल और दिमाग के बीच एक जंग चल रही थी। दिमाग कह रहा था कि अरुणिमा को सजा मिलनी चाहिए, पर उसका दिल तो कुछ और ही कह रहा था। वो बेड के किनारे पर खड़ा था और अपने दोनों हाथों को बांधे अरुणिमा को बस अपनी शांत निगाहों से देख रहा था। आस्तिक का दिमाग उस पर हावी होते हुए कहता है, अरुणिमा को सजा देना जरूरी है। अगर आज उसने मेरे लिए दया दिखाई है तो वो आगे चलकर मुझे और निर्दयी तरीके से देखेगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता हूँ। वो कभी ये बात नहीं जान सकती है कि वो मुझे कितना इफेक्ट कर रही है। आज उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे बात करने की हिम्मत की है, मुझसे सवाल पूछने की हिम्मत की है। मुझे उसकी हिम्मत तोड़नी होगी, वरना कल को वो मुझ पर उंगली भी उठा सकती है। पर तभी आस्तिक का दिल उससे कहता है, पागल मत बनो आस्तिक। इतने दिनों से तुमने जो अरुणिमा के साथ व्यवहार किया है, तुमने एक पल में उसे मिट्टी में मिला दिया है। तुमने वादा किया था कि तुम अब अरुणिमा के साथ कोई दुष्ट व्यवहार नहीं करोगे, और इसी के लिए तो तुमने दवाई खानी शुरू की थी ताकि अपने गुस्से पर काबू रख सको। सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था। जब भी तुम्हें गुस्सा आता तुम वो दवाई खा लेते थे। तो फिर आज क्या हो गया? कैसे तुमने अरुणिमा पर हाथ उठा दिया? तुम देख नहीं सकते थे उसकी आंखों में कितना सूनापन था? वो तुम्हारी कितनी परवाह करती है? और तुमने क्या किया? तुम उसे बेसमेंट में ले गए ताकि उसे सजा दे सको। तुम इतना कैसे गिर गए हो आस्तिक? तभी आस्तिक ने अरुणिमा को देखते हुए अपने आप से कहा, नहीं, मैं उसे सजा देने के लिए नहीं वहां पर ले गया था, बस डराने के लिए ले गया था। मैं चाहता था वो मुझसे इतना डर जाए ताकि कभी भविष्य में मेरे सामने अपनी आवाज ऊंची करने की हिम्मत ना करे। अरुणिमा का चेहरा अभी भी पीला पड़ा हुआ था। आस्तिक अरुणिमा के पास आता है और उसे आराम से ब्लैंकेट से ढक देता है। वो कमरे की लाइट ऑफ कर देता है और खुद कमरे से कहीं चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ शारदा जी के घर में, शारदा जी अपने कमरे में बैठी हुई थीं। उन्होंने अपने चेहरे को अपने घुटनों के बीच छुपाया हुआ था और वो डर से कांप रही थीं। वो बस अपने आप में बड़बड़ाते हुए यही कह रही थीं, ये सच नहीं हो सकता है। वो जिंदा कैसे हो सकती है? नहीं, ये सच नहीं है। जरूर मुझे कुछ धोखा हुआ होगा। वो सीमा नहीं हो सकती है। तभी शारदा जी के कमरे का दरवाजा खुलता है और मिश्री अंदर आती है। अपनी माँ को ऐसा देख मिश्री घबरा जाती है। वो जल्दी से अपनी माँ के पास आती है और घुटनों के बल बैठ जाती है। वो अपनी माँ के कंधे पर हाथ रखती और कहती है, माँ, आप ठीक तो है ना? शारदा जी घबराकर मिश्री को देखने लगती है। मिश्री की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। उसकी माँ का चेहरा पूरी तरीके से पसीने से भीगा हुआ था और बाल बिखरे हुए थे। ऐसा लग रहा था वो काफी देर से रो रही है और काफी परेशान है। मिश्री ने अपनी माँ के चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए कहा, माँ, ये आपको क्या हो गया है? आप ठीक तो है ना? और आप यहाँ पर ऐसे क्यों बैठी हुई हैं? शारदा जी हैरानी से मिश्री को देख रही थी और तभी उन्होंने मिश्री को कंधे से धक्का देकर दूर गिरा दिया। मिश्री अचंभित होकर अपनी माँ को देख रही थी और शारदा जी चिल्लाते हुए कहती हैं, दूर चली जाओ, तुम दूर चली जाओ, मेरे पास से दूर चली जाओ। मैं तुम्हें खुद को मारने नहीं दूंगी। मुझे जिंदा रहना है, मुझे अभी और जीना है। शारदा जी के ऐसे चिल्लाने पर मिश्री अचानक से हैरानी से उन्हें देखने लगती है। वो बहुत ज्यादा डर गई थी क्योंकि शारदा जी कुछ भी उठाकर मिश्री की तरफ फेंक रही थी। मिश्री खुद को बचाने की कोशिश करती है लेकिन अब उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, वो मदद के लिए किसे बुलाए। तभी मिश्री को रजत का ख्याल आता है क्योंकि अरुणिमा की शादी के तुरंत बाद ज्योति दिल्ली चली गई थी अपनी आगे की पढ़ाई के लिए। इसीलिए रजत ने भी शारदा जी के घर में आना कम कर दिया था। पर रजत अभी भी यहीं पर है। यही सोचकर कि वो उसकी मदद करेगा, मिश्री जल्दी से अपने घर से निकलती है। पर उससे पहले वो अपने घर में ताला लगा देती है ताकि शारदा जी घर से बाहर ना जा पाएं। मिश्री जल्दी से दौड़ते हुए रजत के घर पर जाती है। रजत इस समय घर पर ही था। मिश्री रजत के घर का दरवाजा पीटने लगती है। रजत इस समय अपना कोई काम कर रहा था लेकिन जब दरवाजे को इतनी तेज पीटा गया तो रजत आकर दरवाजा खोलता है और कहता है, कौन है? दरवाजा खुलने के साथ ही जब रजत मिश्री को हताश हालत में देखता है तो कहता है, मिश्री, क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मिश्री रोते हुए कहती है, रजत भैया, माँ को कुछ हो गया है। आप उन्हें देखिए ना, उन्हें कुछ हो गया है। आप चलिए मेरे साथ, देखिए वो कैसी अजीब सी हरकतें कर रही हैं। मिश्री की बात सुनकर रजत हैरान हो जाता है। वो जल्दी से मिश्री के साथ चला जाता है। वहीं शारदा जी अपने घर में और ज्यादा दयनीय हालत में आ गई थी। वो जल्दी से उस कमरे से निकलती है और घर के स्टोर रूम में चली जाती है। वो स्टोर रूम में जाकर अलमारी खोलती है और एक पुराने बैग में से एक पुरानी सी तस्वीर बाहर निकालती है। इस तस्वीर में दो लोग थे, एक तो शारदा जी ही थी और दूसरा था अभय। शारदा जी अभय की तस्वीर पर हाथ फेरती है और अपने चेहरे पर घबराहट लेते हुए कहती है, अब वो वापस आ गई है, वो वापस आ गई है। उसने मुझे धमकी दी है कि वो मुझे जान से मार देगी, पर वो वापस कैसे आ सकती है? शारदा जी किसी पागल की तरह अभय की तस्वीर से सवाल पूछे जा रही थी। वो बार बार अपने शब्दों को दोहरा रही थी, ऐसे जैसे कि अभय तस्वीर से निकलकर उसके सवालों का जवाब देगा। शारदा जी हैरानी से अभय की तस्वीर को देखती और कहती है, अभय तुम्हें याद है सीमा की, कैसे हम दोनों ने मिलकर उसकी जान ली थी? तुम्हें याद है कैसे वो सांस लेने के लिए तड़प रही थी? तुमने उसके हाथों को पकड़ा था और मैंने तकिए से उसका मुंह दबा दिया था, और हम दोनों ने तब तक उसे नहीं छोड़ा जब तक कि उसकी तड़प शांत नहीं हो गई। ये कहते हुए शारदा जी के चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत खतरनाक थे और वो बिल्कुल पागलों की तरह बिहेव कर रही थी। धीरे धीरे उन्होंने हंसना बंद कर दिया और अपने आंसू पोंछते हुए कहा, अगर सीमा सच में जिंदा है अभय, तो मेरा यकीन करो, इस बार मैं उसे पहले से भी ज्यादा बेरहमी के साथ मारूंगी। ये कहते वक्त शारदा जी वो औरत लग ही नहीं रही थी जो हमेशा सौम्य तरीके से सबके साथ पेश आया करती थी, बल्कि इस वक्त उनका कुछ अलग ही रूप सामने दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये कोई और ही शख्सियत है, या फिर यूं कह लें कि एक चेहरे के ऊपर दूसरा चेहरा। बस एक सही नजर ही इस इंसान को पहचान सकती है, वरना इस चेहरे के पीछे की सच्चाई कोई नहीं जानता है।